इसी तरीके से एक दिन वे किसी शहर गए थे वहां से मजबूर लोगों को सिंघल लाने के लिए। पर उस दिन वे बस खाली आई और उसमें से सिंघल में बसने वाले नागरिक नहीं उतरे थे बल्कि कुछ बच्चे उतरे थे। मैं उन बच्चों को देखकर हैरान रह गई थी। राजा साहब की गोद में एक छोटी बच्ची थी और उनके हाथ को पकड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा और उनके पीछे एक लड़का और एक लड़की। वे आस्तिक और प्रणाली थीं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए डर के मारे वहां खड़े थे और राजा साहब के पास पृथ्वी और कीर्ति थे। मैं उन चारों बच्चों को देखकर मैं हैरान हो गई। वे चारों बच्चे प्यारे तो बहुत थे लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों से खाना नहीं मिला है। और पृथ्वी, उसने तो बस एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ही लपेटा हुआ था, बाकी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रणाली की फ्रॉक भी दो तीन जगह से फटी हुई थी और आस्तिक, उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी, उसके पास शर्ट भी नहीं थी। आस्तिक उस समय इतना दुबला था कि उसकी पसलियां तक दिख रही थीं। उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत दया आई लेकिन साथ ही उन बच्चों में मुझे मेरी बबीता की झलक भी नजर आई। एक पल के लिए तो मुझे लगा राजा साहब इन बच्चों को भी रियासत के बाकी नागरिक की तरह ही बसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा साहब उन्हें अपने साथ महल ले आए और यहाँ पर उन्हें अपना परिवार बना के रखा। आस्तिक राजा साहब के साथ रहने लगा और राजा साहब ने धीरे धीरे आस्तिक को अपना लिया। लेकिन सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी उन्होंने आस्तिक को और उसके सारे भाई बहनों को गोद ले लिया। आस्तिक राजा साहब का नाती बनकर सबके सामने आया और सबको यही लगा कि ये बबीता के ही बच्चे हैं। शायद बबीता ने विदेश में किसी से शादी कर ली है और अब ये चारों उन्हीं के बच्चे हैं। राजा साहब ने किसी से ये नहीं कहा कि वे बबीता के बच्चे नहीं हैं, लेकिन साफ तौर पर किसी को सच भी नहीं बताया। धीरे धीरे आस्तिक राजा साहब के साथ रियासत का काम देखने लगा और राजा साहब को भी आस्तिक में आने वाला एक अच्छा राजा ही नजर आया। लेकिन सिंघल को एक और दुख सहना था। एक हार्ट अटैक में राजा साहब चल बसे। सिंघल उस दिन बेसहारा हो गया। सबको उनके जाने का बहुत दुख था लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो था आस्तिक, क्योंकि उसके लिए तो उसके भगवान चले गए थे। पर राजा साहब अपनी विल बनाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि उनके बाद सिंघल की राजगद्दी पर आस्तिक बैठेगा, इसीलिए उनकी मौत के तुरंत बाद यहाँ के नए राजा के रूप में आस्तिक सबके सामने आया। राजा बनने के बाद आस्तिक ने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा बल्कि उसने तो दिन रात मेहनत की और सिंघल को एक नई बुलंदी पर ले गया। वे सारे सपने जो बड़े राजा साहब ने देखे थे उन्हें आस्तिक ने पूरा किया है। वे ना ही सिर्फ खुद कामयाब हुए, उन्होंने अपने भाई बहनों को भी कामयाब किया और सिंघल की प्रजा को तो ऐसा लगा जैसे कि आस्तिक के रूप में बड़े राजा साहब उनके सामने हैं। जैसे बड़े राजा साहब सिंघल की प्रजा को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, वैसे ही आस्तिक भी उनसे बहुत प्यार करता है। बबीता के बाद मैंने आस्तिक और उसके भाई बहनों को पाला है। जैसे बबीता मुझे ताई कहकर बुलाती थी, वैसे ही इन चारों ने भी मुझे ताई कहना शुरू कर दिया। भगवान ने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली तो बदले में मुझे चार चार बच्चे दे दिए हैं। कहने के लिए तो मैं उनकी सगी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चारों मेरे सगे बच्चों से बढ़कर हैं। अरुणिमा का दिल भराया था अमृता ताई की बात सुनकर। अरुणिमा बचपन से ही नरम दिल की रही है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन अमृता ताई, अगर राजा साहब बड़े राजा साहब का असली परिवार नहीं है तो फिर राजा साहब की असली माता पिता कौन है? अमृता ताई कहती हैं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। शुरू शुरू में जब आस्तिक आया था तो मैंने उससे पूछा था कि उसके माता पिता कौन है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भराया जिस वजह से मैंने दोबारा उससे ये सवाल कभी नहीं पूछा। और फिर उसके बाद मुझे फर्क भी नहीं पड़ा कि उसके माता पिता कौन है। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। अरुणिमा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, धन्यवाद ताई मुझे ये सब बताने के लिए। अमृता ताई ने कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है अरुणिमा, अपने पति के बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है लेकिन उसके मन में एक सवाल उभर आता है। अगर आस्तिक ने अपना खुद का जीवन इस तरीके दर्द के सहारे जिया है तो फिर वो अरुणिमा पर इतना अत्याचार क्यों करता है? क्योंकि जिसका खुद का जीवन इतनी तकलीफों से भरा हो उसे दूसरों की तकलीफ देने में भी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो आस्तिक उल्टा कर रहा है, उसे तो मजा आता है अरुणिमा को दर्द देने में। अमृता ताई ने अरुणिमा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अरुणिमा, किस सोच में डूबी हुई हो? अरुणिमा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे अमृता ताई आपने ये तो बता दिया कि आपका इन सबसे क्या रिश्ता है, पर आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपने कभी शादी नहीं की? क्या आप शुरू से ही नन थी? अमृता ताई मुस्कुराती है और ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने भी शादी की थी, पर अफसोस मेरे पति जल्दी गुजर गए और उनके जाने के बाद मैंने प्रभु की शरण में ही अपना जीवन गुजार दिया। अरुणिमा ने हैरानी से पूछा, आपके पति का नाम क्या था? अमृता ताई ने कहा, उनका नाम विनय डेविड था और वो एक वक्त पर बड़े राजा साहब के सलाहकार भी थे। ये नाम सुनकर अरुणिमा थोड़ी हैरान होती है और फिर कुछ सोचने लगती है। अमृता ताई कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरुणिमा जल्दी से कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे अब जाना होगा, दोपहर का खाना बनाना है। अरुणिमा कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन किचन की तरफ जाते जाते उसके मन में ये नाम बार बार आ रहा था। उसने शायद इस नाम को पहले कहीं सुना है, लेकिन कहाँ सुना है ये याद नहीं आ रहा है। लेकिन अरुणिमा के जाने के बाद अमृता ताई अपने मन में कहती है, आस्तिक तुम क्या कर रहे हो बच्चे, क्यों अरुणिमा को इतना सता रहे हो? वो लड़की हीरा है और तुम अपनी नफरत की आग में उस हीरे को खो दोगे। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम वक्त रहते संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम अपनी गलती पर पछता भी ना पाओ।